हरे कृष्णा। तो आज की इस 19 अक्टूबर को माधव चरण प्रभु के घर में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। दामोदर मास बहुत पवित्र मास है। ये हमारे लिए बहुत बड़े परम भाग्य की बात है कि भगवान ने इस मास को हमारे लिए निर्माण किया है, क्योंकि भले ही हम सब लोग भगवान को भूलकर यहाँ पर भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भगवान की दया जो है वो बड़ी अपरंपार है। अपार दया है भगवान की। हम लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी हमको भूलते नहीं हैं। जैसे एक पिता अपने खोए हुए बालक को वापस लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, छोड़ नहीं देता उसको, अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है और उसको आकर्षित करने का प्रयास करता है और वेट करता है, उसके लिए इंतज़ार करता है, कभी आएगा, कब मैं उसको मेरा प्यार उसको दूंगा। तो ये तो हम एक दुनिया के पिता की बात कर रहे हैं, एक दुनिया का पिता जो है वो इतना सब करता है, और हम तो परम पिता भगवान की बात कर रहे हैं। वो तो सबके पिता हैं और कितनी सारी व्यवस्था करते हैं कि हम सब लोग दोबारा एक बार उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ हमारा संबंध हो जाए, दोबारा हम उनके चरणों में, उनके घर में लौट जाएं। इसके लिए वो बहुत प्रयास करते हैं जो एक साधारण माता पिता नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण माता पिता का जो संबंध है वो एक जन्म तक सीमित है, और भगवान का हमारा जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर चिरंतन काल तक सत्य है वो हमारा संबंध। इसलिए एक जन्म में अगर इतनी गहराई प्रेम में हो सकती है, तो जन्म जन्मांतर का संबंध होने पर गहराई कितनी हो सकती है, और वो भी उनकी तरफ से कितने हो सकते हैं। हम तो अणु मात्र हैं, वो विभू हैं, अनंत हैं, तो चिरंतन संबंध भी है, तो अनंत होने पर फिर उनकी करुणा भी अनंत होती है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते नहीं। तो इसी चिरंतन और अपरंपार असीम अनंत कृपा और करुणा का ये प्रतीक है कि वो कार्तिक का महीना हमको देते हैं। ये उनके ही हमारे प्रति जो प्रेम है और करुणा है उसका एक प्रमाण है, ये प्रूफ है, क्योंकि इस महीने में कभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो क्या क्या लाभ देते हैं। जितना भी मैंने अध्ययन किया है इस महीने के बारे में, और जो जो करने को बताया है इस महीने में, और जो जो कोई करता है इस महीने में, वो सभी चीज़ों का केवल एक ही परिणाम बताया है। वो क्या है कि ये करने से हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, इस महीने में जो भी करने को बताया है उसमें से एक भी करेंगे हम, या सब कुछ करेंगे, या दो करेंगे, या चार करेंगे, सबका परिणाम एक ही है कि हम भगवत धाम जाएंगे। इतना परमोच्च और दयालु लाभ भगवान कभी देते नहीं, लेकिन इस महीने में दे रहे हैं। जैसे कि इस महीने में हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, पवित्र स्थान में निवास करना चाहिए, कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन खिलाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से एक या इनमें से सब कुछ कब करेंगे इस महीने में, तो एक तो एक चीज़ करने का जो अलग समय पर लाभ है, उससे करोड़ों गुना लाभ आप इस महीने में पाएंगे। और साथ साथ ये व्रत अगर आपका पूरा होता है सफलता से, तो इस जीवन के अंत में गोलोक धाम में पाएंगे अपने आप को। कितनी कृपा है भगवान की। और इस महीने में जो व्रत करेगा उसको पहले किए हुए व्रत के लाभ मिलेंगे अगर वो कार्तिक का व्रत करेगा, और अगर वो बहुत सारे व्रत करेगा और कार्तिक का व्रत नहीं करेगा तो उसको किसी भी व्रत का फल नहीं मिलेगा। ऐसा है। और कोई भी व्रत नहीं करेगा और केवल कार्तिक का व्रत करेगा फिर भी उसको सारे व्रत करने का लाभ मिलेगा। पूरे जीवन में इतने साल में हर बार कार्तिक आएगा, लेकिन इसमें एक कार्तिक का व्रत भी करेगा तो भी जीवन के अंत में गौलोक धाम में प्राप्ति करेगा। तो कभी कभी ना लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग इतने पापी हैं, इतने पाप के विचार रखते मन में, इतना भोग के विचार रखते मन में, कितने सारे हमारे मन में विकल्प हैं, भगवान को छोड़कर हमारी बहुत योजनाएं हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। ऊपर ऊपर से भक्ति तो करते हैं हम लोग साधना, लेकिन मन में हमारे बहुत लड्डू पकते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, और बहुत सोच रहे हैं सोचते रहते हैं हम लोग। और सबसे अधिक सबको कितना भी कुछ भी हो, कितना भी भजन करते होंगे व्रत करते होंगे, सबको पैसा चाहिए, ये तो सत्य है। कितना भी कुछ भी हो लेकिन पैसा चाहिए सबको, उस पर मन जो है ना वो हटता नहीं है पैसे के ऊपर से। इतना सब पतित अवस्था होने पर भी कार्तिक में अगर कोई दिल लगाता है भगवान के ऊपर तो भगवान सब कुछ साफ कर देते हैं, जितनी भी हमारी चेतना है सब साफ कर देते हैं। ये जो पैसे की लालसा है, ये जो दुनिया का भोग लेने की इच्छा है, ये अपने प्रयास से हम लोग नहीं निकाल सकते। हम लोग खुद कोशिश करेंगे तो अपने आप इसको साफ नहीं कर सकते हम। तो कुछ कुछ बातें ऐसी है वो कृपा से ही होती है, वो हमारे प्रयास से नहीं होती है। प्रयास तो हम करते हैं लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जितना कलयुग आगे बढ़ेगा, मत बंद करो गर्मी हो रही है, चलने दो और गर्मी हो जाएगी। तो गर्म ऑयल कुप ठीक है। तो जैसा कलयुग आगे बढ़ेगा ना, हमारा प्रयास और कमज़ोर होते जाएगा। हमारा जप, हमारी साधना, हमारा नियम पालन कल जितना था उससे कमज़ोर कल हो जाएगा, मतलब यस्टरडे से लेके टुमारो तक, और प्रयास हमारा कमज़ोर हो जाएगा। देख रहे हैं ना अभी आप लोगों का ध्यान कितना बटा हुआ है, सब लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं, इतना मग्नता है उसके अंदर कि निकालना इतना मुश्किल है मन अपना। एक बार लग गया तो हाथ में डेढ़ घंटा कैसे गया मालूम नहीं पड़ता है, इतना आकर्षण है माया का, साथ जाल बिछा के रखा है, और हम दिन ब दिन इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में फंसते जा रहे हैं। तो जितने माया के जाल में दिन ब दिन फंसते जाएंगे उतनी उतनी साधना हर रोज़ कमज़ोर होती जाएगी। ऐसा नहीं कि दिन में हम लोग डेढ़ घंटा फेसबुक में मजा करेंगे लेकिन सुबह उठकर बहुत दिल से जप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो ऐसे कमजोर होते जाने वाले साधना की स्थिति में बिना कृपा के कोई तर नहीं सकता है, यही हम सोच सकते हैं। हाँ, तर्क विचार करके यहाँ वहाँ की बातें, आज की स्थिति सत्य इसको समझते हुए अगर हम विचार करेंगे तो ऐसा मत समझना कि अभी तो इतना साल भक्ति हो गई है तो अभी अपने आप भगवान का नाम याद आएगा मरते वक्त, ऐसा मत समझना। आज समझो गुजर जाते हैं हम लोग तो आज शायद जितना आसानी से याद आएगा उतना 10 साल के बाद नहीं आएगा आसान, ये भी सत्य है। हाँ, क्योंकि माया हमको बहुत बहुत ज़्यादा घेर लेती है कलयुग में। तो ऐसे स्थिति में भगवान भी अपनी दया को बढ़ाते हैं, ये हमारे लिए आशा है, एक एक होप है हमारे लिए कि जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे भगवान की कृपा और गहरी हो जाएगी। हमारी साधना का बल कम होगा लेकिन उनकी कृपा का बल बढ़ेगा। श्री वृंदावन धाम आज जितना प्रकट है उतना कम कम प्रकट होते जाएगा, मतलब अप्रकट होते जाएगा। और गौर धाम मायापुर आज जितना प्रकट है वो और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब श्री वृंदावन धाम का गौरव कम नहीं होगा, मायापुर धाम का गौरव ज़्यादा नहीं होगा, वो है उतना ही है लेकिन प्रकट हमारे लिए ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो करुणाएँ हैं भगवान की जो मायापुर में प्रकट है वो ज़्यादा प्रकाशित होगी, जो हम सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम अपने बल पर ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करने के बाद भी असफल रहेंगे तो वही हम पर कृपा करेंगे, वही करुणा करेंगे। प्रयास तो करते रहेंगे, ऐसा नहीं प्रयास हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक भगवान की कृपा जो है वो हमारा साधना की कमजोरी को दूर करेंगी। तो ये कार्तिक जो हर साल में एक बार आता है ना, ये उसी का प्रमाण है जो हमको भगवान कृपा दे रहे हैं। ले लो, कठिन काम है कलयुग में, माया फंसा रही है, गहराई में खींच रही लेके जा रही है, साधना नहीं हो रही है, सुबह को उठने को नहीं हो रहा है, व्रत करने को नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो जितना होता है उतना, बाकी मैं बाकी का सामान आपको दे दूंगा, डोंट वरी, ये भगवान की कृपा है। इसीलिए इस स्थितियों को देखते हुए ये जो कार्तिक मास का व्रत है ना, सब लोगों को दिल से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में समझो करोड़ों साल नहीं होंगे तब तक भी हमारा साधना पूरा नहीं होगा, लेकिन करोड़ों साल नहीं भी होंगे तो करोड़ों सालों में जितना प्राप्त नहीं कर सकते वो एक महीने में कर सकते हैं हम, ऐसा ये महीना है। मतलब एक तो करोड़ों जन्मों में जितने पाप इकट्ठा किए हैं वो एक महीने में, इस महीने में एक बार दीपक दिखाया भगवान को तो वो नष्ट हो सकते हैं, और करोड़ों जन्मों में जो पुण्य आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं वो उस दीपक के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं कृपा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उतना ही 2 ग्राम घी लगा रहे हैं उसके अंदर, जो जनवरी में लगा सकते हैं, फरवरी में लगा सकते हैं, कार्तिक में लगाएंगे तो उसी 2 ग्राम घी का परिणाम अलग मिलेगा आपको। तो हम लोग नहीं कर रहे कुछ उसको, हम तो उतना ही लगा रहे जो फरवरी में लगाया था उतना ही हम कार्तिक में लगा रहे हैं, लेकिन कार्तिक में जब लगाते हैं तो फल देने वाला व्यक्ति जो है वो हमको हम पर कृपा लुटा लेता है, ले लो। इसलिए अगर कार्तिक में कोई आलस्य करेगा ना उसको कोई बचा नहीं सकता है। कार्तिक में अगर हम लोग वही बोले नहीं भाई आज से थोड़ी देर, आज नहीं, कल तो किया ना दीपदान, अभी क्या है परसों करेंगे, अभी उठने को नहीं हो रहा है, अभी नहीं करेंगे, ऐसा कार्तिक में अगर आप सोचते हैं तो क्या कर सकते हैं बताओ। अंतिम कृपा जिस पर हो गई है वो लेने में भी हमको आलस्य है तो और क्या कर सकते भगवान। इसलिए इसके आगे एक महीना है जो कार्तिक से भी पावरफुल है, वो अधिक मास है जो 3 साल में एक बार आता है, कार्तिक से भी अधिक पावरफुल है लेकिन वो 3 साल में एक बार आता है। अगले अधिक मास का साल जब आएगा तब तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नो बड़ी कैन से, कोई गारंटी नहीं उसकी, लेकिन आज कार्तिक चल रहा है और हम जीवित हैं ये सबसे बड़ा भाग्य है। आज का जो भाग्य है वो हमारा है, कल का भाग्य आएगा नहीं आएगा किसने देखा है, इसलिए आज जो चल रहा है उसको आप ले लो, उसमें कंजूसी मत करो। हम लोग सब देने में कंजूस रहते हैं लेकिन हम लोग लेने में भी कंजूस रहते हैं, उसमें भी आलस्य करते हैं। इसलिए कार्तिक का जितना गौरव किया जाए उतना कम है। नाम तो दामोदर मास है उसका लेकिन सारा अधिकार जो है वो उर्जेश्वरी राजा रानी का है, उर्जेश्वरी राधा रानी, और उर्जेश्वरी का ही व्रत है ये पूरा, क्योंकि महीना जो है वो सब कुछ जो भी करते हैं इस महीने में वो दामोदर जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन दामोदर जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम करेंगे उसका फल जो है वो राधा रानी देगी आपको, ये इसका रहस्य है। और राधा रानी की दया कैसी है, वो कृष्ण भगवान जो है वो बहुत नाप तोल के काम करते हैं, लेकिन राधा रानी बहुत भोली वाली है, वो जो भी करती है वो दया उसमें अपरंपार है और नाप तोल तो है ही नहीं, कितनी भोली है। जरा सा कुछ आप करेंगे बहुत सारी कृपा करेंगे, नहीं तो फिर वो अश्वत्थामा के लिए क्या आशा थी, क्या बचने की उम्मीद थी उसको। अरे जिसको कृष्ण भगवान ने स्वयं शाप दिया है, बोलो, मेरे आज तक के पढ़ने में मेरा शायद ज्ञान कम होगा, ऐसा नहीं आया कभी आज तक कि कृष्ण भगवान ने स्वयं किसको शाप दिया है, किसी के द्वारा इधर उधर हो गया है भक्तों के द्वारा, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं अपने मुख से वो इतना भयंकर शाप आज तक किसी को नहीं दिया है। क्या बताया उन्होंने, ये तो मणि उतार लिया उसका और बोला कि ये मणि निकलने के बाद में ऐसा पीप और खून बहेगा इसमें से, कभी रुकेगा ही नहीं वो, और ऐसा दर्द होगा कि दुनिया की कोई चीज़ इस दर्द को मिटा नहीं सकती, नंबर दो। तीसरा बताया कि इतना दर्द होगा कि तुम मरना पसंद करोगे लेकिन मरोगे भी नहीं, इतना भयंकर शाप कोई दे सकता है क्या, तड़पते रहोगे, यहाँ वहाँ भटकोगे, कुछ काम नहीं आएगा, कोई भी दवा काम नहीं करेगी, और इतना दर्द होगा कि मृत्यु का दर्द बोले चलेगा मेरे को, लेकिन मृत्यु भी नहीं मिलेगी, जाओ गेट आउट। तो क्या बचा वो, ब्रह्मा जी के पास जाता है, वो गिड़गिड़ाता है वहाँ जाके, ब्रह्मा जी बोलते सॉरी सर क्या करूँ, तुमको ऐसा शाप जिसने दिया है उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने जिसको शाप दिया वो हम लोग कौन होते हैं उसको कम करने के लिए या डिस्काउंट देने के लिए, हम लोग क्या होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शिव जी के पास पहले गए थे, उन्होंने कहा कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, चाहते हुए नहीं मैं कर सकता, स्वामी जी की हमारी स्वामी की इच्छा है, हम कौन होते हैं, हम तो नौकर हैं उनके। फिर ब्रह्मा जी फिर भी मना करने के बाद भी बोलते हैं एक आप कोशिश कर सकते हो, मतलब मुझे पता नहीं है क्या होगा लेकिन आप एक ट्राई करो, अब बरसाने जाओ और राधा रानी को पुकारो, अगर उनके मन में कुछ आया तो शायद पता नहीं क्या है हो सकता है, ऐसा डर डर के बताया, मतलब नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसलिए पहले से बोल रहे कि भाई देखो कोशिश करो लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो बड़ी आशा से बरसाने गए हो, अश्वत्थामा ने वहाँ पर रो रो कर राधा रानी को पुकारा और राधा रानी प्रकट होकर सारे माफ शाप माफ कर दिए उसके, सारे शाप माफ कर दिए, एक एक क्षण में उसकी जख्म भर गई, एक क्षण में दर्द नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, एकदम पवित्र हो गया वो। फिर आशीर्वाद भी दिया उसको, बोले यहीं रहो मेरा भजन करो, और जहाँ पर तुमने तपस्या किया है तुम जानते नहीं हो, ये मेरा बहुत प्रिय वन है, पिपासा वन नाम है उसका, और ये पिपासा वन का मतलब क्या है, एक होती है प्यास जो पानी पिया बुझा लिया, एक होती है पिपासा भयंकर प्यास, अति तीव्र प्यास, अति उत्कट प्यास, उसको पिपासा कहते हैं। तो बोलते हैं हमारे बीच में राधा और कृष्ण, हमारे बीच में जो पिपासा है मिलन की, वो हम लोग यहाँ मिलते हैं और बुझाते हैं, और ये हमारी रासस्थली भी है, यहाँ पर हम रास भी करते हैं, और उस पिपासा वन में एक राधा कुंड और एक श्याम कुंड भी है। जब श्याम भगवान को रास करते हुए प्यास लगती है तो राधा रानी ने कुंड बनाया उधर और श्याम को पानी पिलाया है, जब राधा रानी को प्यास लगती है तो श्याम सुंदर ने कुंड खोदकर उनको पानी पिलाया है। तो एक राधा कुंड है और एक श्याम कुंड है, उसी विवाह मन में है। तो इस वन की आप रक्षा करो और यही भजन करो, यही आपकी सेवा है। तो आज भी अश्वत्थामा जी पिपासा वन में निवास करते हैं, और जो पवित्र साधु हैं जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है उनको दर्शन उनका होते रहता है, और वो ऐसी रक्षा करते हैं उस वन की कि उस वन में जितने पेड़ हैं उसमें से लकड़ी अगर आपको चाहिए तो केवल भगवान की सेवा के लिए आप ले सकते हो। मतलब भगवान की सेवा में भंडारा है, भोजन लोगों को देना है, साधुओं को, या उत्सव है, तो आप ले सकते लकड़ी। लेकिन निजी काम के लिए देंगे कोई, किसी भी निजी काम के लिए, अगर वो वन से लकड़ी काट कर कोई ले जाएगा तो या तो मर जाएगा, या तो अंधा हो जाएगा, या तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा होगा उसका। और ऐसा भी है कि अगर हम जो भगवान की सेवा का कार्य है और आप हम जो दो मन लकड़ी काट के लेके गए, और दो मन छोड़ो ना उसको भी, डोंट डिस्ट्रैक्ट एनीबडी, लीव इट, दो मन में समझो आपको 4 किलो लकड़ी बच गई, समझो बच गई, तो वो लकड़ी लोग वापस लाके वन में रखते हैं। इसलिए आप पिपासा वन में दर्शन करने जाओगे ना, आपको जगह जगह लकड़ी ऐसी रच के रखी हुई दिखाई पड़ेगी। थोड़ा आगे जाएंगे तो वापस कैसा आड़ा जड़ा करके सा सजा के रखी हुई, थोड़ा आगे जाएंगे तो और थोड़ा सा लंबा एक आएगा ढेर, ऐसे पूरे वन में आपको कई जगह पर ऐसे लकड़ी रखी हुई नजर आएगी। वो सब लकड़ी क्या है, वो लोगों ने ले गए थे और बच गई लकड़ी जो है वो आके वहाँ छोड़ के गए। एक भी लकड़ी जो है वो एक्स्ट्रा आपकी सेवा के बाद में आप घर पे रख सकते नहीं उसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना पाप जो अश्वत्थामा ने किया था, इतना पाप किया था कि भगवान को भी इतना क्रोध आया उसके ऊपर, वो इतना बड़ा शाप दिया उसको भगवान ने। ऐसी व्यक्ति भी माफी प्राप्त कर सकती है, और वो है राधा रानी। उनके सिवा वो कोई माफी दे सकने का अधिकार भी नहीं है, ना कोई देना चाहता है, ना किसी के अंदर उतनी करुणा है ना। अब माफी तो बहुत करना चाहते हैं, बहुत चीज़ लोग करना चाहते हैं, लेकिन शक्ति शक्ति होनी चाहिए ना उसके लिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना। अच्छा, कैपेसिटी होगी तो भी इच्छा होनी चाहिए ना। मुझे बहुत अरबोपति व्यक्ति है समझो, वो 1 रुपया भी देता नहीं किसको, तो अरबोपति होने का लाभ क्या है। अरबोपति है लेकिन क्षमता तो है, लेकिन देने की इच्छा ही नहीं है उसको, तो कंजूस बन के बैठा हुआ है। तो एक तो क्षमता होनी चाहिए, उसके बाद में इच्छा होनी चाहिए, और दोनों राधा रानी के बीच में है। और एक है अधिकार, अभी कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया शाप काटने के अधिकार किसके अंदर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला सॉरी, शिव जी ने बोला सॉरी, लेकिन राधा रानी ऐसी एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो भगवान के अंदर करुणा है, उसका वो अवतार है। भगवान की करुणा जो है वो खुद के माध्यम से जितना प्रकट करते हैं उससे ज़्यादा माध्यम से राधा रानी के द्वारा प्रकट करते हैं। और इसलिए हमारे लिए आशा है कि दामोदर मास में जो हम लोग व्रत करने वाले हैं और करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उसका लाभ देने का जो अधिकार है, जो काम है, उसने अपने पास रखा है। अगर कृष्ण के पास रखते तो कृष्ण अपना नाप तोल के दे देते आपको, लेकिन राधा रानी दिल खोल के देती, नाप तोल के नहीं देती, थोड़ा सा करेंगे तो इतना लाभ देंगे। और मैंने इसलिए बताया कि ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अभी कलयुग का समय आगे बढ़ेगा तो हमारा शक्ति साधना सब दुर्बल हो जाएगा। तो कृपा का माप अगर नहीं बढ़ा साथ साथ में, तो हमारा क्या होगा, फिर कैसे उद्धार होगा। इसलिए इनका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार विनती करते हैं कि कार्तिक के व्रत को करने में आप बहुत उत्साह रखना, और कोई बड़ा बड़ा व्रत करने की ज़रूरत नहीं है कि दिन में एक बार खाएंगे, और वो भी हाथ पीछे बांध कर घुटने से झुककर जितना मुंह से खा सके उतना खाएंगे, ऐसा भी एक व्रत है। साधु लोग करते हैं, घुटने में बैठते हैं, हाथ पीछे बांध देते हैं दोनों, और घुटने से जब झुक जाते हैं मुंह जमीन को लगाते हैं, और पत्तल पर जितना खिचड़ी है उतना मुँह में एक बार जितना गल्प कर सकते हैं, बस आपको सांस भी वही लेनी है, निगलना भी वही है और खाना भी वही है। एक बार ऊपर आ गए तो हरि बोल, राधे राधे। ऐसा भी व्रत करते लोग, कुछ लोग बैठकर व्रत करते हैं और एक ही बार खिचड़ी खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो बाग में दिन भर खाते हैं या तो फल खाते हैं। ये हर प्रकार का प्रयास मैंने किया है, कभी सफल नहीं हुआ मैं, इम्पॉसिबल, ये मेरा अनुभव है। फिर एक जमीन पर सोना, ठंडे पानी से स्नान करना, सूर्योदय के ऊपर 1.5 घंटा पहले उठना और ठंडे पानी से स्नान करना। अभी तो गर्मी है, मज़ा आएगा ठंडे पानी स्नान करने को। वृंदावन जाओ आप, फिर मालूम पड़ेगा कि सुबह ठंडे पानी स्नान करने का मतलब क्या होता है। तो ऐसे सारे कठोर व्रत हैं जो हम लोग शायद अभी कर भी नहीं पाएंगे, आगे कर दिया था कभी, अभी तो कर भी नहीं पाएंगे। बेस्ट ये है कि कठोर व्रत लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा व्रत लो जो बड़ा आसान है लेने के लिए। और निषेध व्रत मत ले लो, विधि व्रत ले लो। वो कैसा है, ऐसा मत लो व्रत ले लो कि अब मैं गुलाब जाम नहीं खाऊंगा, अब मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, अब मैं तेल नहीं लगाऊंगा सुगंधी, ऐसा सब मत करो। कर सकते हैं, बुरा नहीं उसमें, लेकिन ऐसा व्रत लो जो करने वाला व्रत है, मतलब मैं एक वाला जब एक्स्ट्रा करूंगा, मैं एक भागवतम का श्लोक रोज पढ़ूंगा, एक भगवद्गीता का श्लोक पढ़ूंगा, रोज एक दीप दान करूंगा दिन में सुबह एक बार कम से कम। हाँ, करने वाला व्रत लीजिए आप, वो आसान रहता है। कुछ छोड़ने वाला व्रत बहुत मुश्किल रहता है। अब जो आप छोड़ेंगे ना वही सामने आएगा आपके, ये मेरा अनुभव है। अभी यहाँ वहाँ जाता हूँ मैं कथा करने के लिए, कुछ गलती से कोई नहीं खाने का व्रत लिया ना, वही सामने आएगा आपके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कार्तिक महीने के व्रत के महात्म्य में पढ़ा कि इस महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा व्रत नहीं है, ऐसा लिखा है राजमा कुलित और बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो मैंने मेरे पत्नी को बोला कि वो आज ही सुबह बैंगन बनाने वाली थी, मैं देखा किचन में एकदम बड़ा बैंगन रखा है, बोला क्यों लाया उसको, बोला आपको अच्छा लगता है इसलिए लाया। मैंने कहा कि नहीं नहीं इस महीने में नहीं खाएंगे उसको। अभी देखो तो तुरंत वाइफ ने तो कैंसिल कर लिया, तुरंत सर्वेंट को दे दिया कि ये महीना में नहीं खाना है। अरे उधर विरार में वसई में गया लेक्चर देने के लिए, उधर बैंगन की सब्जी आई, तो मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। तो वो जो आप नहीं चाहना करना चाहते ना, वो आपके सामने बार बार आएगा, आपको टेम्प्ट करेगा, कसौटी करेगा आपकी। तो वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है, लेकिन निग्रह किए वो इंद्रियों के द्वारा कुछ करना चाहिए ना। और वो ये है कि मैं एक माला जप करूंगा एक्स्ट्रा, एक दीपक दान करूंगा, ये शास्त्र पढ़ूंगा, वो करूंगा, तुलसी की प्रदक्षिणा करूंगा, तुलसी को भी दीपक दिखाऊंगा। इसको कहते हैं विधि वाले व्रत, करने वाले व्रत। एक होते हैं निषेध वाले व्रत, डोंट्स, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन कार्तिक महीना इतना प्रभावशाली है कि सुबह अगर आप केवल उठेंगे ना 5 बजे, केवल उठेंगे उसका भी लाभ है। केवल जग जाएंगे बस, भजन करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी, केवल उठेंगे तो भी लाभ है उसका। और उठ के अगर स्नान करेंगे तुरंत अंधेरा अंधेरे में ही, तो उसका भी लाभ है। लेकिन हम सब लोग उस लाभ के लालायित नहीं, हम सब लाभ भगवान के नाम लेने से हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे अधिक कृपा जो है ना वो निषेध व्रत में नहीं है, वो विधि व्रत में है। इंद्रिय निग्रह अच्छा है बहुत, लेकिन एक बात ध्यान पता होना चाहिए कि इंद्रिय निग्रह करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रिय निग्रह करने के बाद जो भगवान का भजन होता है उससे भगवान की प्राप्ति होती है। हम सोचेंगे हम लोग केवल खिचड़ी खाएंगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ये सही नहीं है। वो जब संकीर्तन चल रहा था श्रीवास आंगन में रात को, तो एक ब्रह्मचारी छुप गया था एक पेटी में और वो केवल दूध पीता था। तो अचानक भगवान ने संकीर्तन करते करते रुक गए, भगवान बोले कि कौन है इसके अंदर जो होना नहीं चाहिए, कोई है क्या इधर जो इधर होना नहीं चाहिए, अयोग्य व्यक्ति। तो श्रीवास ठाकुर बहुत डर डर के बोले कि हाँ एक है, कौन है, तो ब्रह्मचारी है महाराज, प्रभुपाद अपने भगवान, वो तो केवल दूध पीता है, बहुत बढ़िया तपस्या करता है। भगवान क्रोध से बोलते हैं तुम क्या समझते हो केवल दूध पी के कोई भी भक्ति प्राप्त कर सकता है? केवल दूध पीने से क्या लगता है आपको, भगवान प्राप्त हो जाएंगे? नामुमकिन चीज़ है, उसको निकालो और भगा दो उसको। तो उसने पेटी खोला तो उसके बाल पकड़ के उसको उठाया गया और गेट आउट बोला उसको। बोले हजारों जन्मों में भी दूध पीने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, तो चला गया वो। लेकिन उसने क्या सोचा मन में कि चलो धक्का मार के बाहर निकाल दिया, फिर भी दर्शन तो हो गए ठाकुर जी के, दुर्भाग्य की बात है। कुछ देर तो बैठ के सुना, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना तो सही। भगवान तो सबका मन की जानते हैं, भगवान ने उसका मन का भाव पकड़ लिया और उसको दोबारा बुला लिया। बोला ले लो, उसको बुला लो, ले लो संकीर्तन में, ले लो उसको। अब ये कृपा नहीं तो क्या हुई, योग्य तो था नहीं वो भगवान की दृष्टि से। भगवान के दिल में आया ले लो, तो ले लिया उसको अंदर। और कौन है चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोलने वाले? राधा रानी के करुणा के अवतार है वो, राधा रानी का भाव लेकर आए हुए हैं, राधा रानी है। तो ऐसी जो करुणा है, अकारण बोलते हैं उसको, अकारण करुणा जो है वो राधा रानी कर सकती है, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर, इसलिए वो कर सकते हैं। ये कुछ रहस्य समझना बहुत जरूरी है। तो इनके चरणों का आश्रय लेंगे क्योंकि इनके इनके अंदर क्षमता भी है और इनके अंदर इच्छा भी है और इनके अंदर करुणा भी है, अधिकार भी है, इसलिए कर सकती है और करती भी है। अधिकार इच्छा करुणा होने पर चुपचाप नहीं बैठती, देती रहती है। इसलिए इनका हमारे जीवन में संबंध होना बहुत आवश्यक है। और कार्तिक महीने का जो अधिष्ठात्री देवता है वो राधा रानी है। इष्ट जो है कार्तिक के वो दामोदर हैं। अधिष्ठात्री मतलब जो देने वाली है, हाँ वो तय करे क्या देना है, वो अधिकार राधा रानी का है। और ये महाप्रतापी भी है, लगती है बहुत कोमल, करुण हृदय है उनका, तुरंत किसी के थोड़े से भजन से पिघल जाता है। इतनी कोमल है इनका मन, इतना कोमल, इतना भोला भाला है, थोड़ी सी भी किसी की पीड़ा सही जाती नहीं इनको। जरा सा भी पीड़ा किसी का हुआ तो उसको कष्ट होता है बहुत। तो ऐसे हुआ कि वो एक नंद बैठक नाम की जगह है, वो जगह जगह बनाई हुई है, जहाँ जहाँ नंद महाराज रुके हुए हैं वहाँ वहाँ नंद बैठक बना हुआ है। जैसे वो पहले नंद भगवंत थे, नंदवा गांव में थे, नंदगांव में भी नंद बैठक है। कुछ समय काम्यवन में रहे तो काम्यवन में भी नंद बैठक है, कुछ समय गोकुल में रहे तो उधर भी नंद बैठक है, 84 खंभा है। वो क्या जगह है, वो जगह बहुत अद्भुत जगह है, मतलब जगह कैसी भी होगी उसका भाव बड़ा अद्भुत है। क्या भाव है उसका, कि वहाँ बैठकर रोज कन्हैया के बारे में चर्चा की जाती है, आज क्या हुआ सब लोग चर्चा करते हैं, एक घटना हुई आज तो सब लोग उसके अपना अपना मत देंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, अपने अपने दृष्टि से बताएंगे कैसे हुआ। आपने अलग देखा, लेफ्ट में देखा, आपने राइट से देखा, तो कुछ डिफरेंट देखेगा ना आपको, तो आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे उसके ऊपर और सब लोग उसका आनंद लेंगे, हंसेंगे, हाँ आंसू बहाएंगे कभी प्रेम से, लेकिन रोज बैठकर चर्चा करेंगे वहाँ पर, आज क्या हुआ। जैसे आपके घर पे आए, आपको पूछा तो लंच में क्या बना, तो आप कुछ बताएंगे, फिर नाश्ते में क्या बना तो आप बताएंगे, और बोला और बताओ तो बोलेंगे नहीं आज डोसा बनाने का था लेकिन वो जो आटा था ना वो फुगा ही नहीं, तो फिर उसको कैंसिल करके उपमा बनाया गया, उपमे में कोथमीर नहीं था, फिर पड़ोसी से लाया गया, कथा में ऐड हो गया ना अभी बहुत। पहले पूछेंगे क्या बना ब्रेकफास्ट में, तो बोलेंगे उपमा बना, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो डोसा बनने वाला था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये उपमा पैदा हो गया, तो और हो गया ना वर्णन उसका। उस तरह से ये लोग वर्णन करते हैं, ऐसा ब्लैंड वर्णन नहीं करते, ऐसा ड्राई रुक्ष वर्णन नहीं करते, रस भरा वर्णन करते हैं हर चीज़ का। वो कैसा होता है तोता, फल तो मीठा होता है बहुत पेड़ पर, लेकिन तोता जब चोंच लगाता है तो वही फल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। मैंने खाया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में जो पेड़ है अमरूद का, वो उसका तोता ने चोंच मारा हुआ फल आधा खा के वो नीचे गिर जाता है, वो मैंने खाया हुआ है, मुझे पता है वो कितना मीठा हो जाता है। वो भगवान की कृपा है, सब भगवान की योजना है। उस तरह से ये भगवान एक लीला करते हैं, लेकिन जब उनके प्रेमी भक्त बैठकर उसकी चर्चा करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिठास पैदा होती है उसके अंदर, और वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। तो ऐसा ये नंद भवन नंद भट्ट बैठक पे एक दिन सब लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, और अभी ही गोवर्धन लीला हुई थी। बाय द वे वो लीला इस महीने में हुई है। हाँ, आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कभी हुई थी इस महीने में? इसी महीने में गोवर्धन पूजा आती है ना, वो कभी आती है? दिवाली के सेकेंड डे आती है ना, अमावस्या के दिन आती है। तो उसी दिन गोवर्धन पूजा हुई थी, उसी दिन भगवान ने सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा की थी, और उसी दिन भगवान ने सारा प्रसाद एक ही साथ में खाया था, उसी दिन भगवान ने सारा प्रकट भी किया था दोबारा। उसके बाद में नेक्स्ट डे वर्षा हुई, और वो दिन पकड़ के 7 दिन भगवान के ऊपर इंद्र ने वर्षा किया। तो गिनती जाइए आप, इस तारीख को, इस साल में 30 तारीख को आएगी वो तिथि। तो 30 तारीख को पूजा, गो पूजा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भगवान का खाना, भगवान का दोबारा प्रकट करना, वो सब उस दिन हुआ है। 31 तारीख से वर्षा हो रही है, तो 31 से लेकर 31 6 तारीख तक भगवान धारण करके रहेंगे। ये जानना जरूरी क्यों है? आप उन दिनों में चिंतन कर सकते हैं कि अभी भगवान धारण करके ही खड़े हैं, अभी भी चल रहे हैं 24/7। ये चिंतन भी आपको लाभ देगा। 2 तारीख को उठेंगे सुबह, आप उठते सोचेंगे हाँ अभी भी भगवान गोवर्धन धारण करके खड़े हुए हैं। 6 तारीख को बोलेंगे अभी आज उतार देंगे उसको, आज वर्षा समाप्त हो जाएगी। इंद्र अभी भी वर्षा कर रहे हैं, लेकिन आज तो थक जाएंगे इंद्र और बंद कर देंगे। पानी समाप्त हो गए तो क्या करेंगे बेचारे? फिर भगवान नीचे रखेंगे उसको, फिर दूसरे दिन इंद्र भाग भाग के जाएंगे, फिर आएंगे सुरभि को लेकर, और फिर माफ़ी मांगी जाएगी सुरभि के द्वारा, मतलब सुरभि सिफारिश करेगी, फिर भगवान माफ़ करेंगे। और फिर इसी महीने में 2 दिन के बाद जब वो माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी दी जाएगी उनको, तो बोलेंगे आपको अभिषेक करना है आपका, फिर भगवान का अभिषेक होगा और फिर गोविंद कुंड पैदा होगा। वो इसी महीने में हुआ है, ये महीना बड़ा अद्भुत है। हाँ, तो ये सब जब हुआ सब कुछ, तो उसके बाद में बैठक बनी बैठी थी, तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो कुछ लोगों ने बोला, अरे नंदा हमारा बेटा तो देवता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर, कैसे उठाया उसने एक हाथ पे एक उंगली पे? हमको लग रहा था दर्द हो रहा है उसका हाथ में, कुछ मसाज करना चाहिए, कुछ दूध पिलाना चाहिए, कुछ दबाना चाहिए उसका हाथ। 7 दिन 7 रात ऐसे ही खड़ा रहा, वो भी कोई प्रयास नहीं उसके अंदर, कभी हाँफ रहा है, पसीने आ रहे उसके, मैया हाथ दुख रहा है, और तड़प तड़प के पकड़ रहा है, ऐसा नहीं आराम से पकड़ के इधर देख रहा है उधर देख रहा है, बीच में से मुरली निकालता है। तो सब लोग बोलते हैं अरे मत बजाओ मत बजाओ, क्योंकि मुरली बजाने से खुद भी पागल हो जाता है, क्या मालूम हाथ का पकड़ अगर ढीला हो गया और हाथ ही छोड़ दिया उससे, तो है ना, हम लोग कैसे अभी कीर्तन करते हो ऐसा, उसने ऐसा कर लिया तो कैसा होगा फिर? ऊपर से क्या होता है ना, वो जो मुरली बजाता है ना, तो सब चीज कांपने लगती है भाव से, गोवर्धन भी कांपने लगेंगे ऐसे भाव से कांपने लगेंगे, और कांपते ही नहीं खाली पिघल भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें पिघल जाती है ये मुरली बजाने से, पत्थर पिघल जाते हैं, समझो गोवर्धन पिघल गया तो क्या होगा फिर, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये उनकी मुरली में क्या ताकत है कोई जाने, और क्या आप उम्मीद करोगे और क्या होगा उसका कोई तालमेल नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि ऐसा पत्थर पिघलेगा अभी तो कुछ अलग ही हो जाएगा उस समय, और कुछ अलग होने वाला है ऐसा सोचेंगे तो पत्थर पिघल जाएगा आपके सामने, तो आप लोग देखते रह जाएंगे क्या हो क्या रहा है। तो बोले इसके बदले में आप बजाओ मत, बेस्ट वे, कोई टेंशन नहीं है ना, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई उसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी उन्होंने मुरली निकाली और बजाना शुरू कर दिया, सब लोगों को लगा अरे इतना आनंद आ रहा है, डर भी है कि गिर जाएगा तो कैसे होगा। और ये एक हाथ में गिरिराज गोवर्धन और एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं, सब लोगों को आनंद दे रहे हैं, सारे लोग एक साथ में हैं। देखो जब गाय चराते हैं ना तो केवल सखा लोग साथ में रहते हैं और गाय साथ में रहती है, रास रचाते हैं तो केवल गोपियां साथ रहती हैं, बाकी ग्वाल बाल गाय को रहता नहीं, अगर कोई रहता नहीं। ऐसे एक एक रस के लोग एक साथ में रहते हैं, हर समय सब लोग साथ में रहते नहीं, गिने चुने लोगों का लीला के अनुसार सहभाग होता है। तो गोवर्धन लीला में क्या हो रहा है, अरे सब लोग साथ में हैं, हर लीला वाले साथ में हैं, पंछी भी साथ में हैं, मोर भी साथ में हैं, गाय भी साथ में हैं, ग्वाल बाल भी है, गोपी भी है, माता वाले माता भी साथ में हैं, पिता पिताजी जैसे सब बड़े गोप साथ में हैं, सब साथ में हैं। तो अद्भुत लीला हो रही है, एक ही साथ में साक्ष्य लीला भी हो रही है, एक ही साथ में माधुरी लीला भी हो रही है, एक ही साथ में वात्सल्य भी प्रकट हो रहा है मैया के द्वारा, एक ही साथ में सब प्रकार के भाव प्रकट हो रहे हैं, और भी कोई गड़बड़ नहीं उसके अंदर, कभी ये को बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है, तालमेल सभी रसों का। इसलिए भगवान प्रसन्न थे, इंद्र ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन भगवान प्रसन्न क्यों थे, इसने सब लोगों को इकट्ठा लाया। ब्रह्मा जी पर ज़्यादा उखड़े हुए थे भगवान, तो ब्रह्मा ने सबको अलग कर दिया है ना, साथ में थे उनको अलग करके, चोरी करके अलग अलग कर दिया, पूरा विरह पैदा किया उनके अंदर, और इंद्र ने सबको साथ में लाया, तो भगवान नाराज तो थे लेकिन इतने नाराज नहीं थे। तो एनीवेज ये सब चर्चा हो रही है, ये सब चर्चा हो रही है। तो चर्चा करते 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 सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा देवता है, किसने कहा नहीं वो बड़ा ऋषि है, वो तपस्या किया हुआ को सिद्ध पुरुष। तो इसमें कई कथाएं हैं, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। तो नंद बैठक का जो डिस्कशन है ना, बहुत अद्भुत डिस्कशन है, उसके अंदर कई प्रकार की लीला हुई है कई जगह पर, इधर क्या डिस्कस हुआ, उधर क्या हुआ, फिर ये लोगों ने क्या किया, ऐसा बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर। लेकिन एक में क्या होता है, ये जो गिरिराज वाली कथा है, इसके बाद में जो बैठक होती है उसके अंदर अचानक नंद बाबा बोल देते हैं कि हाँ गर्ग मुनि ने तो कहा था कि ये एक दिन गिरिराज उठाएगा, तभी उन्होंने नाम बोला था, इसका नाम गिरधारी होगा, तो पैदा हुआ था खाली, इधर गिरधारी तो बहुत टाइम है उसको अभी, लेकिन तभी गर्ग मुनि ने बताया था भविष्य देखकर कि ये लड़का एक दिन गिरिराज को उठाएगा। तभी सब लोग पूछते हैं गर्ग मुनि कभी आए थे, अब इसमें रहस्य की बात ऐसी है कि गर्ग मुनि जब आए थे तो गुप्त रूप में आए थे, वसुदेव ने उनको बता के भेजा था कि देखो कंस का भय है, इसलिए बड़े ऐश्वर्य के साथ में इनका जन्म नामकरण मत करना, मतलब अभी घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, बाहर तंबू मत लगाना, बड़ा म्यूजिक मत लगाना, तो कंस को मालूम पड़ेगा अरे इधर ही बच्चा है इसको मारना चाहिए, इसलिए चुपचाप एकदम केवल परिवार के लोग रहेंगे बस, घर के बाहर का एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, और आप रहोगे बस, और गौशाला के अंदर के हिस्से में बैठ के नामकरण विधि करेंगे। तो उसको ऐसे ही फॉलो किया गया था, किसी को पता नहीं था, मतलब नेबर को भी पता नहीं है कि क्या हो रहे हैं, गुप्त रूप में मतलब चुपचाप आए थे गर्ग मुनि, और केवल अभी घर के जितने लोग हैं उतने ही बैठकर नामकरण विधि हुआ था, तब ये सब बातें हो रही थी। लेकिन जो गुप्त रूप की बातें होती है, मैं 6 साल पहले की गुप्त बातें हैं आपकी, अचानक फट से वो खोल जाती है 6 साल के बाद में, सब लोग बैठे बातें करते करते बोलते हाँ गर्ग मुनि ने कहा था, तो ये बोलते गर्ग मुनि कब आए थे यहाँ पर, तो नंद बाबा को मन पड़ता अरे गड़बड़ हो गया, मैंने तो बोल दिया उनको, अब बताना पड़ेगा, बोले गर्ग मुनि आए थे नामकरण के लिए, नामकरण कभी हुआ था, बोले हुआ था ऐसे ऐसे। तो अभी वो भड़क गए सब लोग, क्योंकि तुम अपने आप को हम आपकी बिरादरी के कहते हो है ना, इतने मानते हो कि तुम मेरे ग्वाल बाल हो, मेरे दो जान हो, मेरे मित्र हो, ऐसा वैसा, और नामकरण को हमको नहीं बुलाया आपने, तो वो समझाने लगते कि यार ऐसा है देखो ऐसा भय था वगैरह, वसुदेव ने कहा था, वो सब कुछ बहुत गड़बड़ था उस समय, बहुत टेंशन था, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं बोलना हमको, आपने हमको चीट किया है, फंसाया हमको, हाँ अपमान किया हमारी मित्रता का, और हमको नहीं बुलाया आपने। चलो सब लोग ऐसा भी देखो, चार लोग बोल रहे तो 8 लोग और बोलने लगते हैं ना, एक आदमी बोलेगा तो ठीक है, लेकिन एक आदमी बोलेगा, चार बोलेंगे, चार के 8 हो जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। तो सब लोग ऐसे भड़कने वाला का ग्रुप बन गया, बोला कि नंद बाबा को अपनी बिरादरी से हटा दो, रस्टिकेट कर दो, इसको बरी कर दो हमारी बिरादरी से, नहीं चाहिए हमको। क्या है ये सब कुछ? हाँ क्या ढोंग है सब ये मित्रता का? नामकरण विधि किया, इतनी खुशी की बात है, हमको नहीं बुलाया। तो फिर ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया। अभी एकदम तो तारीफ हो रही थी, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा था, चर्चा हो रही थी, अचानक रस बिगड़ गया पूरा। तो बाकी लोग थोड़ा बैठे हुए थे शांत, तो वो बोला अरे गड़बड़ मामला है, ये सब गंभीर मामला हो गया एकदम, थोड़ा सा संभालना चाहिए इसको। तो खड़े हो गए और बोले कि देखो ऐसा है, हम जानते हैं उस समय बहुत, अभी नंद बाबा ही सफाई देते रहेंगे तो उनके ऊपर और चिढ़ेंगे ना। वो नंद बाबा को चुप किया, बोला हम सफाई देते हैं और हम बताते हैं उनको क्या हुआ। तो वर्णन करते हैं बहुत सारा। तो ये ग्रुप है ना, उन पर भड़कता है, बोलता है इन लोगों को भी बरी कर दो हमारे बिरादरी से, नंद बाबा का पक्ष ले रहे ना, नंद बाबा के साथ इनको सबको भी हटा दो, होलसेल में निकाल दो इनको, नहीं चाहिए हमको लोग। तो फिर वो अभी मामला और बिगड़ गया, कोशिश तो थी कि मामला ठंडा हो जाएगा, तो और बिगड़ गया मामला। तो तीसरा एक ग्रुप खड़ा हो जाता है मामले को सुलटाने के लिए। तो जो दूसरा वाला ग्रुप था ना, उसके अंदर वृषभानु महाराज थे। कौन है वो? राजा रानी के पिताजी हैं। वो समझा रहे हैं बाकी लोगों को जो गुस्सा करके रखे हैं। देखो क्रोध कैसे होता है ना, क्रोध करने से क्या होता है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक बार क्रोध आ गया ना, फिर तुम्हारी बुद्धि जो अच्छी है वो भी कुछ काम की नहीं रहती, ये सब क्रोध में है ना सब लोग। तो वृषभानु बाबा को भी बोलते हैं कि इसको भी बरी कर दो। तो तीसरा ग्रुप खड़ा हो जाता है, बोलते हैं ए वृषभानु बाबा को बरी करने की बात मत करो, इनकी कन्या महाप्रतापी है, इनकी कन्या है ना, इसलिए तुम लोग यहाँ आराम से रहकर डिस्कस कर रहे हो, नहीं तो हाय दिन यहाँ पर राक्षस आता, नहीं तो हर दिन यहाँ पर जैसे हम लोग गोकुल में थे वैसे ही राक्षस यहाँ पर हर दिन आता। आज नंदगांव बरसाने में कोई राक्षस आया क्या कभी? बोलो आया कोई राक्षस? और नहीं आया कोई, आज तक नहीं आया। तो किसकी वजह से नहीं आया? इनकी कन्या जो है राधा रानी वो महाप्रतापी है, इसलिए यहाँ पर राक्षस नहीं आया। तो वो पूरी कहानी सुनाती है उसको, महाप्रतापी कैसी है, मैंने आपको क्या बात शुरू की थी, ये बड़ी महाप्रतापी भी है, तो इनका महाप्रताप क्या है। तो अभी वो तीसरा ग्रुप जो है वो समझा रहे हैं पहले सेकंड वाले ग्रुप को, नहीं पहले वाले ग्रुप को जो चिड़के खड़े हुए हैं। वो क्या कहते हैं, भैया तुम सब लोग जब भी निकल के आए ना वहाँ से गोकुल से, सब लोग ने गोकुल छोड़ा ना क्योंकि तो रोज राक्षस आते हैं यहाँ पर, जब तुम छोड़ के वहाँ पर आए ना और शिफ्ट हो गए तो नेक्स्ट डे भी वहाँ पर कंस के लोग आए थे राक्षस, उन्होंने देखा सब खाली हो गए, इधर को है ही नहीं, इधर कोई नहीं है, सब शिफ्ट हो गए, तो वापस गया वो। तो कंस को खबर दिया उसने कि गोकुल में तो कोई नहीं है, किसको मारे हम, रावल में भी कोई नहीं है, सब जगह ख़त्म। तो कंस बड़ा परेशान हो गया, अरे किधर गए सब लोग। तो वो अगले दिन कंस स्वयं आया, खुद देखा गोकुल में कोई नहीं, तो उसको तो कृष्ण को मारना है कैसे भी करके। तो उसने क्या किया, अपने सेनापति को भेज दिया, चार लोगों को भेज दिया। तो चार लोग जो है वो ढूंढे ढूंढे नंदगांव पहुंच गए, और नंदगांव में उन्होंने देखा कि हाँ अरे कृष्ण बलराम तो इधर है खेल रहे हैं। तो तुरंत उसको पकड़ के मारने का कोशिश करने को गया और पकड़ा और स्पर्श किया ना कृष्ण को, तो सब लोग पत्थर हो गए, तो भी लौट के नहीं आए वो, है ना। बाय द वे कोई लौट के आए नहीं, वन वे ट्रैफिक था सबका, वन वे टिकट, रिटर्न टिकट है ही नहीं किसका सब लोग गए ना उधर से, पर मार दिए गए ना। तो जो चार लोग गए आगे पहुंचे, उन्होंने देखा भी उनको, लेकिन वो मर गए उधर ही, मतलब पत्थर बन गए। तो फिर कंस परेशान हो गया, तो कंस खुद गया, किधर गया, बरसाना में गया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जैसे ही वो बरसाने में गया वो स्त्री बन गया, मतलब धोती कुर्ता पहन के ऐसे राजवस्त्र पहन के गया था और अंदर में सब चेंज हो गया। अभी समझो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी आप जानते मैं पुरुष हूँ, समझो अचानक मैं स्त्री बन जाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे मालूम पड़ेगा ना कि अंदर कुछ चेंज हो गया है, बाद में आपको मालूम पड़ेगा। तो ये बहुत परेशान हो गया, अरे है तो महारथी ना, दिग्विजयी महारथी था वो। उसके ऊपर एक गर्ग संहिता में पूरा अध्याय दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे ना आप, तभी आपको मालूम पड़ेगा कृष्ण भगवान का बल क्या है। कि जिसने कृष्ण भगवान ने जिसने जिसको मारा उसका गौरव का एक चैप्टर है पूरा उसके अंदर, कितना पराक्रमी था वो, उसने क्या क्या नहीं किया। बाय द वे एक बात सुन लो आप, वो था ना हाथी कोले या पीड़, सुना है आपने उसकी कथा। उसका इतना शक्ति था उसका, वो पूरे 14 भुवन में उसके नाम से लोग डरते थे, कोले पीड़ हाथी के नाम से सारे देवता कांपते थे उसके नाम से। वो जरासंध के तंबू में था, जरासंध का हाथी था वो, इतना बलशाली था वो कि वो साकल तोड़ के निकला तंबू में से, तोड़ के भागा वो, और भाग के ध्वंस करते हुए वो कंस के अखाड़े में आया। वो कंस दिग्विजय में था उस समय, और दिग्विजय करते करते बीच में प्रैक्टिस भी करता था, तो 50 मल्लों को लेके एक साथ लड़ रहा था वो, और सबको सुला रहा था, और वो उनके प्रैक्टिस चल रहे थे उसमें, क्या चाणू और मुष्टिक सब बड़े बड़े योद्धा थे उसके अंदर, और सब क्या प्रैक्टिस कर रहा था वो, ऐसे सबको एक हाथ से फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है। उतने में वो कुलया पीड़ आता है उसका अखाड़े में, अरे ये जो शल तोमर और कूट और क्या नाम, चाणूर मुष्टिक ऐसे बहुत सारे मल्ल थे, विश्वविख्यात थे वो, देवताओं भी डरते थे उनको। जैसे ये कोला पीड़ आया ना, सारे मल्ल भाग गए, गोल्ड मेडलिस्ट सब रेसलर्स भाग गए, और कंस ऐसा खड़ा रहा अकेला। और वो हाथी चार्ज करते हुए सामने आया, तो हाथी को पैर से ऐसा उठाया, सब गोल गोल घुमाया, और ऐसा फेंका उसको, वापस जाके जरासंध के तंबू में जाके गिरा हो। जरासंध देखा, अरे बाप रे, अभी तो चिंता कर रहे थे किधर गया ये तोड़ के साकड़ी, अभी देखा तो उसको फेंका गया किसी ने, अरे कौन फेंका उसको, इतना कौन बलशाली हो सकता है। तो ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ा, खबर मिली, अरे वो कंस है वो, उसने जब देखा इसको तो सब बड़े बड़े योद्धा थे उसको भाग गए, और ये अकेला खड़ा रह के उसको उठा के उसने ऐसा फेंका कि तुम्हारे तंबू में आके गिरा। तो जरासंध को मालूम पड़ा कि अरे बाप रे, इतना बलशाली आदमी है ये, इसके साथ युद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए, ये दिग्विजय करने को तो आएगा मेरे पास, लेकिन मैं सीधे उसका हाथ मिला लूंगा, उससे दोस्ती कर लूंगा सीधे, युद्ध करने का कोई सवाल ही नहीं। और एक काम करूंगा, दो अपनी कन्या जो है अस्थि और प्राप्ति उसको लेके सीधा तम्बू में पहुंच गया उसके, बोला ये लो मेरी कन्या के साथ विवाह कर लो, और मैं मेरा जमाई बन जाओ, उधर ही विवाह हो गया कंस का अस्थि और प्राप्ति के साथ में, और जरासंध का युद्ध उद्ध करने का चांस ही नहीं, वो सीधा समधी बन गया उसका, मतलब ससुर बन गया उसका। ये मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ कंस के बल का, इतना बल था, तृणाव्रत को भगवान ने जितना आकाश में ले गया ना वो तृणाव्रत, उससे 1000 गुना ऊपर कंस को ले गया था तृणाव्रत, और वहां से कंस ने उसको जमीन पर पटकाया है, लेकिन मारा नहीं, नौकर बना लिया उसको अपना, वृष्टासुर ये सब लोग जो है ना, प्रलंबासुर बकासुर ये सब लोग को ऐसा ऐसे चुटकी से परास्त कर दिया उसने, और पुतना भी ऐसे आई हा हा करके, तो बोला कि तू तो औरत है तुझसे क्या लड़ना है, तू मेरी बहन बन जा, उसको बहन बना लिया, तो बकासुर भाई हो गया उसका, है ना, ऐसा उसका पूरा इतिहास है। वो दिग्विजय किया हुआ कंस है ना, वो कन्या बन गया मैडम, सोचो आप क्या लगता होगा उसको। हाँ कोई ऐरा गैरा आदमी कन्या बन गया तो ठीक है, कौन पूछता है उसको, अरे इतना बड़ा आदमी, उसको खुद को भी अपना घमंड है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, उसको जब पता चलता है कि मैं किस उद्देश्य से आया था और क्या हो गया मेरा इधर, अभी देखो ऐसी संकोच की बात है तो वो क्या, किसको मराठी में बोलते ना सह नहीं होते सांगता ही इतने, ऐसा संकोच हो गया अभी क्या बोलूं किसको, इस जगह दर्द हो रहा है वो कैसे बताऊं कहां दर्द हो रहा है। तो कुछ देर के बाद में सब गोपियों को मालूम पड़ा ये कंस है, ये मालूम पड़ा कि ये तो कन्या बना हुआ है, कंसनी गोपी बन गया वो, सब लोग तालियां बजाने लगे, अच्छा हो गया अच्छा हो गया, हमारे कन्हैया को मारने का प्रयास करता है, राक्षसों को भेजता है, हाहाकार मचाता है, अच्छा हो गया तुम्हारा, अच्छा हो गया अच्छा हो गया, इतना बड़ा जिससे देवता भी भयभीत थे, सबको हाहाकार मचाया था उसने, इतना बलशाली राजा जो है, इसको ये लोग टैक्स देते थे, हमेशा नंद महाराज विश्वानु महाराज जाके कर चुकाते थे उसका। हर समय एक महीने के बाद जाके उधर टैक्स लेके आते थे वो चुपचाप एकदम। इतना भयंकर राजा था वो, उसने पिता को पकड़ कर जेल में डाल दिया। उसने हंसते खेलते ऐसा सबको मार के उसने बंद करके पिता को जेल डाल लिया और राजा बन गया वो मथुरा का। भरे दरबार में ऐसा खून का और मांस का दलदल बना दिया उसने। सब लोग देखते रह गए, सब लोग जेल में। हंसते हंसते जाके बैठ गया सिंहासन पे। ऐसी वट थी उसकी। वो आदमी जाकर उधर औरत बन गया, गोपियों के चरणों में गिरा। अभी इतना खराब कंडीशन है ना, अभी कोई देखने वाला नहीं अपने राज्य से, लेकिन औरतें हंस रही हैं। चरणों में गिरा उनके, किसके, जो सिंपल सी होती है ना औरत, जो दूध निकालती है गाय का, गोबर साफ करती है, हाँ गाय का पैर साफ करती है, दूध निकालती है, मंथन करती है, मक्खन निकालती है, ऐसे सिंपल औरतें ना, ब्रज की औरतें, ब्रज गोपियाँ, उनके चरणों में जाके गिर जाता है वो। दे कुछ तो करो, मेरा उपाय करो, तो गड़बड़ हो गया पूरा। तो जोर जोर से हंसती है वो सब औरतें, बोलते ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, चलो पहले गोबर निकालो, चलो पहले गाय को साफ करो, चलो सब वो गोबर साफ करो, उसके ब्रज रज मिला के उसके कंडे बनाओ, उसको पेट पे सुखाओ, सूखे हो गए इकट्ठा करो, टोकरी में डालो, घर पहुंचा दो। अरे 6 महीने कंडे लुपवाए उससे, 6 महीने रोते रोते लुपवाए। बोलो अगर हम लोगों को मौका मिलेगा ना गोपियों के राज्य में, तो अपने आप को धन्य मानेंगे आप लोग, मतलब जीवन का परिपूर्णता प्राप्त हो गई। लेकिन कंस की मति सही नहीं थी ना, उसको तो अपने आप परिपूर्णता प्राप्त हो गई थी ना, आया था किसके लिए, लेकिन ऑलरेडी गोपी बन गया वो। हम सब लोग गोपी बनने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप गोपी बन गया, लेकिन उसकी मति सही नहीं थी, इसलिए इतनी कृपा होने पर भी वो तो रोता ही रहा, छुड़ा दो छुड़ा दो छुड़ा दो, पहले ही शरीर को प्राप्त करा दो, छुड़ा दो। और वो तालियां पीट कर उससे काम करवा रहे हैं, सबके घर पे काम किया उसने फ्री में। ऐसा भी नहीं भाई सेना को बुला लेता, आ जाओ सेना, ये लड़कियां मुझे परेशान कर रही है, लेकिन सेना आके देखेगी हमारा राजा ही कन्या बन गया तो क्या बोलेगा वो, तो किसी को बुलाने का भी चांस नहीं। इतना संकोच, सोचो आप, ये बात किसी को पता नहीं है, खाली गोपियों को पता है। उधर मथुरा में किसको पता नहीं, राजा गया है पराक्रम करने के लिए, पराक्रम करके लौट के आएगा, देख रहे वो लोग, वेट कर रहे हैं, और पराक्रम क्या हो रहा है, कंडे बन रहे गोबर के। 6 महीने के बाद में वृषभानु महाराज की उंगली पकड़कर राधा रानी वहां आती है, और ये राधा रानी के चरणों में गिर जाता है। बोलते राधा रानी, वृषभानु नंदिनी, वृंदावन रानी, कृपा करो, कृपा करो, अब कृपा करो। तो वृषभानु महाराज की दया आती है उसको देखकर, ये तो हमारे राजा हैं, इनको हम लोग कर चुकाते, और ये मुरी आज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं मेरी कन्या के सामने। तो राधा रानी को बोलते हैं कर दो, कृपा कर दो इसको, जरा रो रहा है बहुत। तो राधा रानी छोटी सी कन्या उंगली उठाती है, बोलते हैं दोबारा आओगे ना परमानेंट कन्या बनोगे, याद रखना इस बात का। अभी बोलती हूँ कि मेरा कुंड है किशोरी कुंड, इसमें छलांग लगा दो, पुरुष बन जाओगी, तुरंत चले जाना यहाँ से। तुम्हारे में से कोई भी आदमी आएगा ना तो ऐसे हालत हो जाएगी उसकी, याद रखना। वार्निंग देती है वो, किसकी हिम्मत थी कंस को वार्न देने के, बोलो, पूरे ब्रज में सब कांपते थे उसके नाम से। उसको एक छोटी सी कन्या उंगली उठा के वार्निंग दे रही है, दोबारा आओगे ना तुम्हारा कोई आदमी आएगा, तुम आएगा ऐसे हालत करूँगी तुम्हारी, याद रखोगे तुम। तो उसने झट से छलांग लगाई उसी वस्त्र में जिस वस्त्र में था, और गीले गीले बाहर निकल के जो भागा सीधा मथुरा तक भागा, पीछे मुड़के भी नहीं देखा। क्यों, कहीं मन बदल गया तो महारानी का, अरे रुको रुको रुको, वापस आओ, वापस कन्या बन जाओ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। तो इनका कृपा अभी हो गई है, तुरंत भागो यहाँ से, दोबारा कभी कंस के द्वारा या कंस स्वयं या उसका आदमी कभी बरसाना नंदगांव नहीं आया। बरसाना नंदगांव जावट, इस इलाके में कभी राक्षस नहीं आया कोई। तो ये सब कौन बता रहा है, वो तीसरा ग्रुप बता रहा है स्टोरी जो मैंने आपको बताई अभी। बोले इनको निकालने की बात मत करो, तुम लोग इतना बैठ के बात कर रहे हो ना, इसकी कृपा से, इसके बेटे की कृपा से बात कर रहे हो, महाप्रतापी राधा रानी जो है इसके कन्या वृषभानु की, इसकी बात निकालने के बाद हिम्मत मत करना आप। तो ये कथा सुन के सबका क्रोध शांत हो गया। सब लोगों ने गले मिलाया और माफी मांगी कि ऐसा कुछ नहीं, तो माफ कर देना। तो ये प्रताप है इसका। कृष्ण को तो लड़ना पड़ा उसके साथ में, है ना। और कृष्ण को तो वो मारने की सोचता रहा, मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा, ऐसे करूंगा, इसको भेजूंगा, उसको भेजूंगा, धनुर्युद्ध करूंगा, ये मल्लों को भेज दूंगा उसके ऊपर, चाणूर मुष्टिक को, ऐसा हमेशा करता रहा। मतलब वो डर था उसको, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था बार बार कि उसको मैं मारूं। फिर आखिर में बोला गया मैं भी खुद मारता हूं उसको। चलो उसने चाणूर को, मुष्टिक को, सब तोमर को सब मार दिया ना, अभी तो मेरे सामने खड़ा है वो, अभी मैं मारूंगा उसको। लेकिन राधा रानी के सामने गिड़गिड़ा रहा था वो। फर्क है ना उसके अंदर, एक को डर, दोनों को डर रहा है, लेकिन एक को डरने के बाद भी मारने की कोशिश कर रहा है, और एक के सामने केवल अनुनय विनय कर रहे हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? तो ये राधा रानी है, इतनी पावरफुल है वो। और गोवर्धन लीला में एक और एक बात हुई थी जो भी आपको बताना जरूरी है। वो सब है ना, वो सब ग्वाल बाल, सॉरी, पहले तो माता बोल रही है अरे सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने, सुबह से गोवर्धन को उठा के खड़ा है, दूध तो पी ले कम से कम, दूध पिला रही है उसको, वो ऐसे पकड़ के दूध पी रहा है। फिर बोल रही है अरे तो चेंज तो कर हाथ, थोड़ा सा इधर से उधर डाल, मैं हाथ को मालिश कर थोड़ा करती हूँ, दर्द होता होगा, ऐसे पकड़ के रखा हमको, समझो ऐसे पकड़ के रखने को बोला, गोवर्धन नहीं ऊपर खड़े ऐसे हाथ रखने को बोला, तो फिर इधर से दुखने लगेगा आपको कुछ देर के बाद में, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। आप कभी देखो भोग लगाते ना भोग, तो कुछ बच्चे खड़े होते हैं चादर पकड़ के, फिर ऐसा पकड़ते चादर को, ऐसा पकड़ते हैं, फिर ऐसा पकड़ते हैं, तकलीफ होती है उनको। चादर, चादर क्या होती है, कुछ भी नहीं है, तो गिरिराज पकड़ के खड़ा है। तो मैया बोल रही है थोड़ा सा चेंज कर देना हाथ, इस सास को मालिश करती हूँ, फिर इसको पकड़ लेना, फिर इसको पकड़ लेना। तो लेकिन वो थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो मैया बोल रही देखो इतना मैंने मेहनत किया, हाँ कैसे मेहनत किया, जो वो कमल वाली खुशबू होती है ना, कमल खुशबू, वो वाली घास वो कुछ 100 गायों को खिलाती थी, केवल 100 सिलेक्टेड काउस, उनको वो कमल की खुशबू वाली गाय खिलाती, घास खिलाती थी, तो उनकी उनकी दूध को भी कमल की खुशबू आती थी, पुष्पगंधा दूध, गाय का नाम भी पुष्पगंधा गाय, उसका दूध भी पुष्पगंधा, कमल का पुष्पगंधा, फिर उसमें दही जमाएंगे दही को भी पुष्पगंधा, और जो उसमें से और उसका छाट के फिर वो जब भी मक्खन निकलेगा ना, तो और गाढ़ी सुगंध वाली मक्खन, कमल खुशबू वाली, फिर वो कृष्ण को खिलाती थी। तो सोच रही है, बाकी लोगों से बात कर रही है, बड़े बड़े गोपियों से, देखो अच्छा किया ना मैंने, इतना मेहनत किया, देखो आज काम आया ना, वो मक्खन खाया इसलिए आज उठा रहा है वो। तो ये जब वार्ता सुन रहे, बड़ी 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 मैया कर रही है, तो छोटे ग्वाल बाल जो है वो हंस रहे हैं, बोलते ये मैया लोगों को पता नहीं है, हम असली राज तो हमको मालूम है। हम लोग उसको गौचारण के समय पे रोज कुश्ती खेलकर हराते थे, वो हार हार कर जो उसने शक्ति प्राप्त किया ना, उसके वजह से उठा रहा है वो। हमने मतलब ट्रेनिंग दिया उसको इतना, हर तरह के उसको तरह तरह से उसको पटक पटक के हमने हरा दिया, उसमें वो इतना कुशल बन गया कि देखो आज हमारी ट्रेनिंग की वजह से वो गिरिराज को उठा के खड़ा है। तो ये जब डिस्कशन हो रहा है ग्वाल बालों के बीच में, तो गोपियां सुन रही है और वो देख के हंस रही है, ये ग्वालकों को क्या मालूम है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मूर्ख लोग हो, आपको कुछ पता नहीं कि एक्चुअली ये गोवर्धन क्यों उठा के रखा है, वो क्या रहस्य है उसका। तो ग्वाल बाल पूछते हैं क्या रहस्य है उसका, तो बोलते हैं कि तुम लोग को कुछ पता नहीं है, ये मैया को लगता है कि मक्खन खिलाया वो भी झूठ है, तुमको लगता है तुमने कुश्ती खिलाया वो भी झूठ है, तो फिर सत्य क्या है बताओ। तो वो गोपियाँ कहती है अरे पगलों, वो राधा रानी तिरछी नज़र से कृष्ण को देख रही है और कृष्ण उसको भी छुप छुप के देख रहे हैं, वो नज़र में से जो शक्ति जा रही है ना, नज़र में से वो नज़र से शक्ति जो मिल रही है उसके द्वारा वो उठाए रख रहे हैं, नहीं तो उठाना बना मुमकिन नहीं कन्हैया को। राधा रानी तिरछी चितवन से जो बल दे रही है इसके वजह से कन्हैया में वो शक्ति आ रही है, नजरों के माध्यम से आ रही है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? बोलते प्रूफ बाद में देंगे आपको, निश्चिंत रहो आप। तो फिर ये सब बातचीत होती है और फिर इंद्र थक जाते हैं, फिर वो वर्षा बंद कर देते हैं, फिर गोवर्धन नीचे रखते हैं, है ना। फिर गोवर्धन अपनी जगह पे खड़ा हो गया, फिर लीला समाप्त हो गई। तो फिर ग्वाल बोलने को याद आता एक दिन, अरे उन्होंने कहा था ना कि उनके नज़रों में इतना बल है कि वो नज़रों से ही उठा के रखते, चलो आज देखते हैं अभी किधर नज़र किधर शक्ति है, बता देते हैं। सब ग्वाल बाल मिलकर जाते हैं गोपियों के पास, बोलते गोपियों आपने तो कहा था कि राधा रानी के नज़रों में इतना बल है, आज दिखा दो, उठाओ गोवर्धन को, देखते हैं फिर कितना नज़र में बल है। तो राधा रानी को बुलाते हैं, वो राधा रानी को कहते हैं कि उठाओ। बोला उठाऊं? तो राधा रानी ऐसे नीचे देखती है गोवर्धन के तल पर और फिर नज़रों को ऐसे उठाती है और गिरिराज आकाश में जाता है, पूरा गिरिराज वो देख रही है ऐसे, तो पूरा गिरिराज आकाश में। तो सब लोग आश्चर्य हो जा रहे, बाप रे केवल देख रही है उसको, नज़रों से उठाया। तो कहती है अभी रख दो नीचे, तो रख दो नीचे देख लिया हमने। तो वो नीचे देखती है गिरिराज आकाश से ज़मीन पे नीचे आ जाते हैं, तो वो ग्वाल बाल सब चुप हो जाते हैं, अभी क्या बोलेंगे, मुझे कृष्ण का नया तो है नहीं वहाँ पर उठाने के लिए, वो कोई उठाने का ऐसा कुछ कर नहीं रहा है कोई उठाने के लिए, काले खड़े होकर देख रही है उसको, आकाश में उठाया नीचे रख दिया उसको, ऐसी शक्ति है उसके अंदर, लेकिन है कितनी कोमल हृदय। तो वही राजा रानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कृष्ण के पीछे भागते रहेंगे ना तो भागते ही रहो आप, जन्म जन्मांतर तक भागते रहो, कभी मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि तो हमारा भजन ही इतना कमजोर है, वो क्या हम लोग थोड़ी यशोदा माता है कि वो भाग रही है और वो पकड़े जा रहे हैं, वो तो यशोदा माता है, वो भाग रही है और वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी इच्छा है कि चलो मैया भाग रही है मैं पकड़े जाता हूँ, मैया बांधने का प्रयास कर रही है मैं बांध जाता हूँ, चलो तो मैया है वो, हम लोग क्या है, हम लोग इतने ध्यानी तपी तपस्वी लोग जो है ना, इतना कठोर तपस्या करके जन्म जन्मांतर तक तपस्या कर रहे हैं, अरे उनको तो कन्हैया के चरणों के और हाथों के नाखूनों के द्वारा जो अनंत किरण निकलते हैं उसकी एक किरण भी नजर नहीं आती उनको, इतना सब करने के बाद दर्शन तो जो भूल ही जाओ आप, उनकी तरफ से आने वाली किरण भी दिखाई नहीं पड़ती, वो किधर भगवान, वो भगवान जो है ये गोपियों के बालों में उनको बांध के लटका के घुमाते हैं वो लोग, समझ में आपको, लंबे बाल होते हैं ना उसके वो चोटी बनाते हैं, वो चोटी में कन्हैया को बांध कर लटका के लेके जाते हैं वो लोग, इतने अधीन है उनके वो, मतलब वो बॉडीगार्ड बलशाली नहीं है, वो प्रेम का बल है, वो प्रेम के बल से कृष्ण को अधीन करा लेते हैं। तो अपन खुद अगर उनके कोशिश में लगेंगे प्राप्त करने के, कभी प्राप्त नहीं मिलेंगे आपको वो, कभी नहीं होंगे, लेकिन जब राधा रानी कृपा करेगी तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि राधा रानी जब सिफारिश करती है ना कि ये भक्त ना बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी भक्ति करता है, तुरंत उसको स्वीकार कर लेती हो, और खुद आप कोशिश करते रहोगे नो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, राधा रानी सिफारिश करेगी तुरंत आपको स्वीकार किया जाएगा, बलि ऐसा है प्रेम का। तो इसलिए हमारा भाग्य क्या है कि हमको ये सब गुरु महाराज और साधुओं की कृपा से पता चल गया है कि राधा रानी ऐसी ऐसी है, और उनके पास जाओगे तो किसी को नकारती नहीं है वो, मतलब रिजेक्ट नहीं करती है किसी को, जो जाता है उसको स्वीकार कर लेती है। अगर वो खुद मुश्किल काम होता भाई उनको उनके ग्रहण शरण ग्रहण करना तो एक अलग बात है, लेकिन ये इतनी आसान एंट्री है, इधर जब भी जाओ चरणों में गिरो अपना बना लेती हो। अरे एक सुअर मरे मरा पड़ा हुआ था राधा कुंड के किनारे पे, और ये जल्दी जल्दी भाग रही थी राधा रानी अपनी सखियों को, कुछ 4-5 सखियों को लेके भाग रही थी, तो पैर में कुछ अटकता है ऐसे रास्ते में होता ना कभी, तो पूछते क्या है, तो फिर राधा ललिता बोलती है ये एक सुअर है ना वो मर गई है, उसका देहांत हो गया है। अच्छा, मुड़ के देखती है तो ले लो उसको अपने में ले लो, तुरंत उसको गोपी बना लेते हैं अपने पार्षद में ले लेते, ऐसी कृपा है उनकी, जब किसी पर दिल आ जाए उसको अपने पार्षद बना लेती है। वो कोई रो रहा था जोर शोर से, तो बोला कौन रो रहा है, जाके देखो ललिता, तो ललिता जाती है शिवखोर में, शिवखोर राधा कुंड के घेरे में ही है, एक आध किलोमीटर दूर है, तो रोने की आवाज़ आई तो उसको सहन नहीं होता है, कोई रो रहा है मेरे घेरे में रो रहा है, तो ललिता को भेजती है वो। तो क्या देखते हैं ललिता, कुछ बच्चे जो है ना वो एक भेड़िया की होती है ना, मादी भेड़िया होती है ना, मतलब शी जैकल, उसको पीड़ा दे रहा है उसको, तो भागती है और वो जाकर एक गड्ढा में घुस जाती है, एक होल में, छेद में। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग वो छेद को ना बंद कर देते हैं और वो लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके आग लगा देते हैं ऊपर से, और अंदर अंदर गई है वो छेद में, और बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगी, वो आग लग रही है, वो सब तालियां पीट के हंस रही है और वो अंदर से चीख चीख पुकार रही है वो भेड़िया। तो ललिता आती है, बच्चे को भगा देती है, सारी आग वाग बुझा देती है, निकाल देती है और भेड़िया को बाहर निकालती है और उसको लेके जाती है राधा कुंड पे, राधा रानी के पास। तो राधा रानी बोलते क्या हुआ, बोलते ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा इसको ले लो अपने अंदर। तुरंत उस भेड़िए को अपनी गोपी बना लेते, इतनी कृपा है उनके अंदर, करुणा का सागर है वो। जैसे भगवान का शरीर ना बोलते थे, नित्यानंद प्रभु का और भगवान का, ऐसे शरीर को हाथ लगाएंगे ना वो लगेगा कि मक्खन को हाथ लगा रहे हो, इतना मुलायम उनका शरीर हुआ करता था। वैसे ही ये पर्सनैलिटी राधा रानी के जो है ना, वो करुणा 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 इतनी है उनकी, करुणा ही है पूरी, व्यक्ति तो बाद में है, करुणा का ही व्यक्तित्व है पूरा। और इतना करुणा है, इतना प्रेम है कि वो कृष्ण को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या ये। तो समझने के लिए वो कृष्ण जो है ना वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, उनके लिए भी रहस्य की बात है, तो सब कुछ जानते हैं, ये नहीं जान सकते कि इतना करुणा कैसे आ गया इनके अंदर, और क्या करुणा है ये, और कैसा अनुभव है उनके अंदर मेरे से प्रेम करने से। इतने बड़े सर्वज्ञ होने के बाद भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर इतना प्रेम और करुणा है, क्या है क्या ये, चलो एक मेरा अवतार खर्च करता हूँ उसके अंदर मैं, कोई साधारण बात नहीं है एक अवतार खर्च करना। गिन जिन के कितने अवतार होते हैं भगवान के, बड़े बड़े प्रमुख अवतार, तो एक पूरा अवतार उन्होंने खर्च किया उसके लिए, केवल समझने के लिए कि क्या है क्या है इसके अंदर, वो कौन, आप और हम नहीं कर रहे हैं अवतार खर्च, स्वयं परम भगवान कर रहे हैं। ऐसी व्यक्तिमत्व है, ऐसा पर्सनालिटी है, और वो इस महीने की अधिष्ठात्री देवता है, और वो इस महीने में बाकी सारे महीने से करोड़ों गुना अधिक दयालु होकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। करो बेटा करो, थोड़ा बहुत कर लो, मैं बैठी हूँ आपको बल उसका फल देने के लिए, इसलिए उत्साह से करो। अब नहीं करोगे तो इतनी करुणा बाबा बार बार नहीं मिलेगी आपको, मैं तो बता दिया, मैंने दिया पहले आपको, जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा और दुर्बल होते जाएंगे हम, तो अभी हाथ पसार लो, अभी हाथ पसारने की शक्ति है तो पसार लो और ले लो कृपा उनकी, आगे जाकर वो पसारने की इच्छा भी नहीं होगी, इतना माया का प्रभाव होगा हमारे अंदर। अभी वो खड़ी है कृपा देने के लिए, आपको थोड़ी बहुत शुद्धि है इस बात की, शुद्धि मतलब क्या, शुद्ध शुद्ध यानी क्या कहते हैं उसको, होश होश है आपको अभी कि भाई है ऐसा कुछ, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हाथ पसार लो, अपने आप को पसार लो उनके सामने और ले लो उनकी कृपा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ऐसा भिखारी बनकर हम लोग जाते हैं बरसाने में और पुकारते हैं, भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया, मैं तेरा एक भिखारी राधे, आ जाओ गिरिधारी। इस भाव से जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, एक दिल है टूटा फूटा, वही देना चाहते हैं। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, राधे तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया, राधे तेरी गली में। हमारे पास और कुछ नहीं है, हम प्रेम और श्रद्धा के साथ में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, और जब वो करेंगे तो वो इतनी दयालु है वो अपना लेगी, अपना लेगी अपने को, तो कृष्ण हमको नकार नहीं सकते। जिसको राधा रानी अपना लेती है उसको कृष्ण अपनाना ही पड़ता है उनको। तो इसलिए दिल लगा के व्रत करो कार्तिक का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।